वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठवें अध्याय का छठवें स्कंध का श्लोक अध्याय 18 श्लोक 31 पढ़ेंगे, 41 पढ़ेंगे। शरत् पद्मोत्सवम् वक्त्रम् वचश्च स्वर्णामृतम् हृदयं सुरधाराभम् स्त्रीणां को वेदचेष्टितम्। शरत् पद्मोत्सवम् वक्त्रम् वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं सुरधाराभम् स्त्रीणां को वेदचेष्टितम्। शरत् पद्मोत्सवम् वक्त्रम् वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं सुरधाराभम् स्त्रीणां को वेदचेष्टितम्। शरद ऋतु में पद्मा कमल पुष्प उत्सवम फूलते हुए वक्त्रम मुख वचः शब्द च भी श्रवण कान के लिए अमृतम सुख देने वाले हृदयम हृदय छुर छुर धारा छुरे की धार आभम सदृश स्त्रीणाम स्त्रियों के कह कौन वेद जानता है चेष्टितम चरित्र को। अनुवाद और तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद की। स्त्री का मुख अत्यंत आकर्षक तथा शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उनके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के चरित्र को जान सके। तत्पर कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का यह बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसीलिए स्त्री के मुंह की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद ऋतु में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और गायनरत स्त्री आकर्षक होती है। आजकल तो सीने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत धन कमाती हैं। इसीलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है। किंतु यदि सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर नेत्रों को देखता है तो वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होगा और उसका पतन हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहां तक कि मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे और न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुंह को देखकर उसकी प्रशंसा करना और उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री का शरीर सुंदर है, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर हो होती है तो वह पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री आवे तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उसे परिचित न होने के कारण उसमें गिर जाते हैं। चूंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री पर आधारित है, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करे, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। ये शास्त्र की आधिकारिक शिक्षाएं हैं। अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रियो वैश्याश तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दें, प्रत्येक जीव भगवान के धाम जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय है। यह श्लोक भी इसी प्रसंग में है। कश्यप ऋषि स्त्रियों के चरित्र का, स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक जो तात्पर्य में अपने बताते हैं कि यह जो वर्णन है कश्यप ऋषि करते हैं, अथवा श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, यह स्त्रियों की आलोचना नहीं, अपितु उनके स्वभाव का एक स्वाभाविक अध्ययन है। इसमें क्रिटिसाइज की वही छोटा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है। उस प्रसंग में स्त्रियों के स्वभाव का, उनके हृदय का एक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है वस्तु स्थिति के अनुसार। कथा प्रसंग आप जानते हैं, कश्यप ऋषि बड़े क्षुब्ध थे अपनी स्त्री से, विशेषकर जब उसने यह आग्रह किया कि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र होना चाहिए और वह पुत्र तो अमर हो, दीर्घजीवी हो, परंतु साथ साथ वह उसमें इतना कॉम्पिटेंट, उसमें इतना बलवान होना चाहिए कि वह इंद्र को मार दे, इंद्र की हत्या कर दे। इसी को लेकर कश्यप ऋषि कहते हैं स्त्रियों के सामान्य वर्ण, शरत पद्म उत्सवम वक्त्रम। कश्यप ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों का मुंह चेहरा कमल के समान सुंदर होता है, ऐसे विश्व में ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत सुंदर वस्तुओं का निर्माण हुआ है, तो उसमें कमल भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमल ऐसे ही सुंदर होता है, परंतु फिर भी जब वह कमल जो शरत काल में खिलता है, उगता है, तो उसकी और शोभा होती है। शरत पद्म पुष्प हमेशा खिले रहते हैं, लेकिन शरत काल में जब पद्म पुष्प खिलते हैं तो और सुंदर होते हैं। शरत काल जानते हैं ना कौन महीना होता है? अक्टूबर नवंबर, शरत, कार्तिक, आश्विन और कार्तिक, बरसात के बाद जो कमल खिलता है सरोवरों में तो और सुंदर होता है। तो स्त्रियों का जो मुख कमल होता है, मुंह होता है, वह शरतकालीन कमल के समान आकर्षक होता है। श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में पता नहीं सब कहना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब लिख ही दिए हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। स्त्रियों का सौंदर्य हमेशा सुंदर होता है, कमल हमेशा सुंदर होता है, लेकिन शरत काल में विशेष उसमें सुंदरता आती है। उसी तरह स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य होता है, कमल सुंदर होता है, लेकिन 16-17 वर्ष की अवस्था में उनके सौंदर्य की वह प्रकाष्ठा होती है, सीमा होती है। इसके बाद सौंदर्य धीरे धीरे धूमिल होने लगता है, अतः वह अवस्था विशेष पुरुषों के लिए आकर्षक होता है। श्री प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि यह एक शास्त्र का आदेश है, क्या करना चाहिए, उपदेश क्या भाग क्या है। उपदेश है तो उपदेश में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रारंभ करते हैं कि सौंदर्य से विशेषकर जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसे आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसे बचने का प्रयास करना चाहिए, विशेष करके ब्रह्मचारी और सन्यासी को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसे तात्पर्य में कहते हैं कि सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के चेहरे पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, और साथ साथ वो कुछ गान करती हैं, उनके शब्द होते हैं, तो उस संगीत को भी नहीं सुनना चाहिए, और कहीं आप देख भी लिए स्त्री के सौंदर्य को, मुंह के सौंदर्य को, और उसके स्वर को सुन भी लिए, तब एक प्रभुपाद जी और बातें कहते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, देख दृष्टि पड़ भी गई तो उसका वर्णन मत करने लगे कि वह उसका सुंदर बहुत मुंह है अथवा वह गा रही है तो संगीत की प्रशंसा करने लगे, यह नहीं होना चाहिए। यदि यह कोई करता है, स्त्री के सौंदर्य को देखता है और उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका वर्णन करता है, स्त्री के स्वर को सुनता है और उसको खूब बढ़िया करता है, वो सब गायन है, तो वह श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चित वह सन्यासी पतित होगा। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार कुछ असफल योगियों का नाम लेते हैं तो दो लोगों का नाम प्रभुपाद जी लेते हैं, असफल योगी। असफल योगी समझते हैं ना, जो योग पथ से गिरे थोड़े काल के लिए कम से कम, उसमें एक है विश्वामित्र और दूसरे सौभरी ऋषि, नाम सुने हैं ना। तो यहां पर श्री प्रभुपाद जी विश्वामित्र की बात कहते हैं। विश्वामित्र जी के विषय में वर्णन है कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, 60,000 वर्ष की उनकी तपस्या थी, 60,000 तपस्या कर रखे, आंखें तो उनकी बंद थी। तो उनके ध्यान को भंग करने के लिए, उनको योग भ्रष्ट करने के लिए इंद्र एक अप्सरा को, स्वर्गीय जो स्त्री है मेनका, उसको भेजे। तो जिस समय विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे थे, आंखें उनकी बंद थी, कोई मेनका को एक्सेस नहीं मिल रहा था, कैसे उनको आकर्षित किया जाए। मन से मेडिटेशन में है, मेडिटेशन ध्यान में है, आंखें बंद हैं, तो कैसे आकर्षित कर सकती थी, क्या साथ कैसे हुआ, क्या एक्सेस है उनके ध्यान को आकर्षित करने का। आवाज, आंख बंद करने के बाद भी कान की वृत्ति खुली रहती है, तो आंख तो हम लोग बंद भी कर लेते हैं, कान तो कभी कभी लोग एयर प्लग डाल देते हैं, लेकिन वो बेचारे नहीं डालते। उसने यह एक्सेस देख लिया और थोड़ा वहां पर अपने नूपुर से कुछ ने ध्वनि किया, तो उनके कर्ण कानों में जो ध्वनि प्रवेश हुई बहुत उनको अच्छी लगी। यहां पर कश्यप ऋषि क्या कहते हैं, वचश्च स्वर्ण स्वर्ण अमृतम, उनकी वाणी होती है तो कान के लिए ऐसा लगता है कि उसे अमृत प्रवेश कर रहा है। तो मात्र आवाज था और नूपुर का आवाज, बोली शब्द से कुछ नहीं बोली थी, मुंह से कुछ नहीं बोली थी, नूपुर से आवाज की थी, तो उनका ध्यान भंग हो गया, अटेंशन उधर गया, दृष्टि देखी, दृष्टि उन्होंने देखा तो वहां पर स्वर्ग की अप्रतिम दिव्य अप्सरा सुंदर स्त्री वहां पर, इसके बाद उसे वह आकर्षित हुए और उनमें अपने योग की जो विधा थी, जो प्रोसेस अपनाए थे, उनको उन्हें छोड़ दिया। आप लोग जानते हैं उनके सहवास से, संयोग से मेनका को पुत्री हुई, शकुंतला उसका नाम था, विश्व प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध, वेद प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध हुआ, में शकुंतला उत्पन्न हुई। तो ऋषि बड़े इम्प्रेस हुए, तपस्वी थे, साधु थे, महात्मा थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और यह बड़ी खराब स्थिति थी कि वो एक स्त्री से उनका सहवास हुआ, संपर्क हुआ, यही दुर्भाग्य की बात थी। इतना ही दुर्भाग्य ने उसको पुत्री भी उत्पन्न हो गई, तो उस पुत्री का कौन पालन करे। तो साधु तो ऐसे इम्प्रेस थे, कहना भी नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री भाग गए नहीं, पहले वो नहीं भागे, मेनका भाग गई छोड़कर। नवजात शिशु है, अभी बच्ची का जन्म हुआ है, उसको फेंक और भाग गई स्वर्ग। जैसे मनुष्य की स्त्रियों में, पृथ्वी की स्त्रियों में दया होती है, मोह होती है, वैसे स्वर्ग की स्त्रियों में नहीं होती है। यहां पर कोई मां है तो अपने पुत्र पुत्र तथा पुत्री को छोड़ेगी नहीं, रखेगी पालन कर, उसे फेंक कर भाग गई। अरे साधु है, महात्मा है, तो कहना भी नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री है, तो वो अभी भाग गए, इम्प्रेस फील कर रहे। वो लड़की बालिका नवजात शिशु वहां पर पड़ी हुई थी, उसके उस अकवर्ड पोजीशन को देखकर, धूप लग रहा था, तो शकुन नाम के पक्षी, भल्चर गिद्ध से कहते हैं, उनको पक्षियों को दया आ गई और उन पक्षी आकर पर छाया की, कम से कम छाया की प्रारंभ में उन्होंने पालन किया, तो शकुन नाम के पक्षियों ने उसका पालन किया था शकुंतला का, इसीलिए उसका नाम शकुंतला हुआ, शकुन नाम के पक्षियों ने उसका पालन। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, यह बात कहकर कि शब्द नहीं सुनना चाहिए, शब्द सुनने का भारी डिजास्टर विश्वामित्र के चरित्र में, विश्वामित्र के जीवन में हुआ कि अपने योग पद से गिर गए। लेकिन वो महात्मा थे, उनको बहुत पश्चाताप इस बात का हुआ कि मैं अपने योग पद से भ्रष्ट हो गया। पुनः उन्हें प्रयास किया और फिर उस स्थिति को पहुंचे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह एक बहुत शिक्षाप्रद है, कश्यप ऋषि यह बताते हैं। तो मुख सुंदर होता है, वाणी ऐसे लगते उसमें अमृत मिला हुआ है, श्रवण अमृतम, कान के लिए अमृत ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन सबसे कठोर, सबसे घातक स्त्री का हृदय होता है। हृदयम क्षुरधाराभम, क्षुरा रेजर, शार्प होता है उनका हृदय, थोड़ा भी प्रोडक्ट नहीं करते, काट देते हैं। वचन, चेहरा तो सुंदर है, वाणी भी मधुर है, लेकिन हृदय इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है स्त्रियों का कि उनके स्वार्थ में थोड़ी भी क्या कहते हैं बाधा आती है तो टॉलरेट नहीं कर पाते। कश्यप ऋषि ने यह कहा है कि नहीं कश्चित प्रियम स्त्रीणाम, स्त्रियों को कोई प्रिय नहीं होता है, स्त्रियां किसी से प्रेम नहीं करती हैं। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम, स्त्रियों को कोई, उनका कुछ इंटरेस्ट होता है, स्वार्थ होता है, उसके लिए किसी से प्रेम नहीं करती हैं, प्रेम करने का नाटक करती हैं, नाट्य करती हैं, विडंबन। नाटक समझते हैं ना, आप स्टेज पर जानते हैं कोई राजा बनता है या किसी, तो कोई राजा नहीं हो जाता है, और राजा होने का विडंबन है, भेसमरण है। वैसे स्त्रियां किसी से प्रेम नहीं करती, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम का नाट्य करती हैं, नाटक, नाटक समझते हैं ना, ड्रामा, ड्रामा में स्टेज में आते रहते हैं, किसी से युद्ध करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं है ना, न तो युद्ध भी नहीं, हेटेड भी नहीं है। दो राजा बनते युद्ध करते हैं तो वो क्या होता है, उनमें युद्ध है, कोई हेटेड नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, वह ईर्ष्या का नाटक किया जाता है, वैसे ही कहीं प्रेम भी किया जाता है उसमें। तो स्टेज पर जो एक्टर लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो वह प्रेम का नाट्य है, वैसे ही स्त्रियां प्रेम नहीं करती हैं। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम, स्त्रियां किसी से प्रेम नहीं करती हैं, लेकिन देखा तो जाता है, ये तो यह कैसे आप कह सकते हैं प्रेम नहीं करती हैं, एकदम से ये तो प्रचलित बात है सभी। तो कहते हैं कि वह नाटक है, और यदि उस स्वार्थ में उनके इंटरेस्ट में किसी भी कमी आ जाती है तो नाटक भी नहीं करती है, तो नाट्य भी छूट जाता है, समझते हैं ना। स्टेज पर जो राजा है वो उतना भी नहीं करती है, पहले तो नाटक हो रहा था जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन वो स्वार्थ सिद्ध हुआ अथवा उसमें बाधा होता, वो नाटक भी खत्म हो जाता है, बहुत खत्म। तो अब प्रभुपाद पता नहीं क्यों उसमें बार बार कहते हैं, और तुरंत प्रभुपाद जी ये सारा जगत का जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण के केंद्र बिंदु स्त्री है, सबसे केंद्र। इसी में आप लोग देखते हैं, इस समय ऐसा लगता है, आप जिधर भी देखें बिलबोर्ड चार एडवर्टाइजमेंट है, यदि आपका कोई प्रोडक्ट है और उस पर स्त्री का चित्र नहीं देंगे तो शायद आपको पुलिस जेल में डाल देंगे। देखें ना, कोई भी एडवर्टाइज हो चाहे किसी चीज का हो, उसमें स्त्री का ही होना चाहिए, होता है ना, ऐसा लगता है कि उसमें आप नहीं देंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हो आप तो नहीं देंगे तो आपको पुलिस जेल में डाल देंगे कि आपने स्त्री का फोटो उस पर क्यों नहीं दिया, चाहे कुछ व्यक्तव्य। तो सारे प्रभुपाद जी का यह सेंटेंस है, मैं थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं कहना चाहता है, संसार के सारे आकर्षण स्त्री पर आधारित है, केंद्र बिंदु स्त्री। और फिर श्री प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में चाणक्य को कोट करते हैं, इस तात्पर्य में है, चाणक्य पंडित का भी उपदेश है विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं ही करना चाहिए। किस पर? दो लोगों का नाम है। विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं ही करना चाहिए। किस पर नहीं विश्वास करना चाहिए? स्त्रीसु राजकुलेषु च, स्त्री पर और पॉलिटिशियन पर कभी विश्वास नहीं करना। अब आप लोग कल्पना कीजिए, आप जहां रह रहे हैं स्त्री भी और पॉलिटिशियन भी, तब क्या होगा? तो यह कहां तक विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास न करें, राजनीतिक तथा स्त्री। यह पार्ट तो हो गया बड़ा हार्ड पार्ट। इसके तात्पर्य के शुरू शुरू में श्री प्रभुपाद जी एकदम ओपनिंग सेंटेंस है, कश्यप ऋषि का जो स्त्रियों का चित्रण है वह भौतिक दृष्टिकोण से है, देहात्म धारणा पर आधारित है। वह देहात्म धारणा से मतलब बॉडली कॉन्सेप्ट। तो जो कश्यप ऋषि प्रस्तुत कर रहे हैं यह चित्रण, यह देहात्म धारणा पर भौतिक कॉन्सेप्ट आधारित, लेकिन इसके साथ एक आध्यात्मिक धारणा, उच्च धारणा है, जिसमें स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जो आत्मा है, चाहे स्त्री का आत्मा है अथवा पुरुष का आत्मा है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वह एक डिफरेंट ड्रेस है, जिसमें पोशाक, शरीर एक पोशाक के रूप। तो आध्यात्मिक प्रगति यदि कोई स्त्री करना चाहती है अथवा कोई पुरुष प्रगति करना चाहता है, तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है शास्त्र में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस दृष्टिकोण विचार, तो फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अपने को एक तरह से मोड़ जैसा करते हैं, यू टर्न जैसा करके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। भगवान स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं कि स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उस व्यक्ति वह स्त्री अयोग्य नहीं है, इक्वली वह पोटेंट है, इक्वली और समर्थ है आप भगवान की भक्ति करने में, भगवान का कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के। इसीलिए जो लोग स्त्रियों के आकर्षण से प्रभावित होते हैं तो वह उनका दोष है, वह उनकी कमी है। अब स्त्री पर दोषारोपण नहीं करेंगे कि विश्वामित्र चाहे सौ भरी गिरे तो चलो स्त्रियों का दोष है, वो उनकी कमी है। मैं हरिदास ठाकुर भी थे ना, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। तो कश्यप ऋषि का जो चित्रण है भौतिक दृष्टि को लेकर है, देहात्म धारणा की स्थिति को बनाकर, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो आत्मा तो एक ही प्रकार का होता है और आत्मा परिवर्तन भी करता है, आज पुरुष के शरीर में है कल स्त्री के शरीर में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी पुरुष के शरीर में है आत्मा तो हमेशा पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में जा सकता है, और स्त्री का आत्मा है, स्त्री शरीर में रह रहा है वो आत्मा, वो पुरुष शरीर में आ सकता है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी का अंतिम कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। तो हमें परंतु यहां पर चूंकि कश्यप ऋषि क्या कहते हैं कि उनका हृदय बड़ा क्षुब्ध था, दुखी थे अपनी पत्नी के व्यवहार से, इसीलिए उन्होंने यह बात कही कि हृदय, स्त्रियों का हृदय छुरे के धार के समान होता है। हृदयम छुर धाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। इसलिए स्त्री के, स्त्री क्या प्लानिंग अंदर से कर रही है उसके नजदीक से नजदीक व्यक्ति भी समझ नहीं सकता है। स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम, स्त्रियों के चेष्टितम को, चरित्र को, प्लान को, व्यवहार को कोई समझना दुरूह होता है, कठिन होता है। ये तो समझ रहे थे कि उसको खुश किए थे कि कुछ अच्छी चीज मांगे, को तो नहीं समझ पाए कि इतना घातक मांग सकती है। ऐसा इसमें इंद्र के प्रति ईर्ष्या है, उसे मारना चाहती है। तो यहां पर सामान्य रूप से कश्यप ऋषि स्त्रियों के चरित्र का, उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी एक जगह पर इसके तात्पर्य, अगले तात्पर्य में लिखते हैं कि यह स्त्रियों की आलोचना नहीं है, यह क्रिटिसाइजिंग का मूड उनका नहीं है कि हम स्त्रियों को नीचा देखा है, वैसा है, बल्कि उनके स्वभाव का एक मनोवैज्ञानिक नेचुरल अध्ययन है। वास्तविक स्थिति तो बता देना होता है कैसा। वही जब आत्मा पुरुष के शरीर में रहता है तो एक भागवतम के टीकाकार ने लिखा है कि भगवान को भी एक बार आवश्यकता थी कुछ छल कपट करने के लिए, कुछ पार्शियलिटी इधर, कुछ द्वंद करना था। समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत देवताओं को पिलाना था, असुरों को वंचित करना था, तो छल कपट करना था। तो यह कपट करना है तो भगवान को भी कपट करना हो तो स्त्री का रूप बनाए, उसमें आसान होता है छल कपट करना है। तो कुछ कपट करना है, छल करना है, एक बार और भी छल किए हैं पुरुष के शरीर में भी, लेकिन विशेष करके देवताओं को अमृत पिलाना है, असुरों को वंचित करना है, उनको ठगना है, तो उसके लिए उपयुक्त शरीर है स्त्री का, तो स्त्री बने थे। भगवान भी एक बार स्त्री बने और स्त्री बने तो खूब छल कपट किए। अच्छा है देवताओं को अमृत पिलाए और असुरों को ऐसे ही वंचित रख। तो ठीक है, अभी तो कंटिन्यूएशन में है, आगे का भी श्लोक है, उसमें भी लगभग सिमिलर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि अंधकूप गांव में होता है, कुछ ऐसे कुआं होता है कि उसका प्रयोग नहीं होता है, तो चारों तरफ से घास जम जाता है, घास जम जाता है तो अक्षम हो जाता है। कोई व्यक्ति अनजान है, अनजान नहीं जानता है, वो तो जानता है कि मैं जमीन पर ही चल रहा हूं, लेकिन वहां तो घास है तो गिर जाता है उसमें, अंधकूप। तो श्री प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि स्त्रियों अंधकूप के समान है, उसे डरना चाहिए, वो डरने के सेंस पर है, उसे डरना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई गिर जाएगा। अब अंधकूप में, कुआं में कोई गिर जाएगा, सामान्य कुआं होता है जो यूज किया जाता है, तो कोई पानी भरने जाता है तो उसमें निकाल भी सकता है, उधर तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर से घास, तो उसमें तो मृत्यु हो जाएगी। तो यह कहते हैं कि स्त्रियों के संपर्क में आना मन अंधकूप में गिर जाना, और वहां आपको कोई अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं है, और अंदर कुएं में पानी होता है, मच्छर होते हैं और कभी कभी सांप भी होते हैं, तो ये और भी उसको तो अंधकूप, स्त्रियों को अंधकूप के तरह कहेगा। और हाँ तात्पर्य में एक बार श्री प्रभुपाद उसी के तुरंत बात कहते हैं कि आप लोग जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु स्त्री शब्द ही नहीं बोलते थे, जानते हैं ना, स्त्री शब्द का उच्चारण ही नहीं करते थे, वो स्त्री के लोग प्रकृति कहते थे, वो शब्द भी नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक जगह वर्णन है कि एक भक्त थे, परमेश्वर नाम के भक्त थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो गृहस्थ थे, परमेश्वर आए थे वहां से, तो अपनी स्त्री के साथ आए थे, चैतन्य महाप्रभु को मिलना था, उनको महात्मा है साथ भगवान है उनके पास मिलना है, स्त्री आए, तो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों का दर्शन नहीं करते, उनकी उनसे बातें नहीं करते हैं, तो अपनी स्त्री को दूर रख दिए, तुम यहां रहो, खुद अकेले मिलने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, परमेश्वर नाम बड़े खुश हुए, पूछे कि ठीक से यात्रा ठीक से आ गए ना यहां पर, तो परमेश्वर क्या किए, भूल से वो एक बात कह दिए, हाँ बढ़िया से आ गया, और उनके पुत्र का नाम था मुकुंद, मुकुंद की मां भी आई है। इतना ही कर, अब उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब बेचारे प्रेम थे, प्रेमी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी भक्त चैतन्य, पूछ लिया ठीक से बढ़िया से रास्ता में कोई कष्ट नहीं हुआ ना, कैसे आए, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं कोई कष्ट नहीं हुआ और मुकुंद की मां भी आई है, यह प्रथा है, ऐसा शिष्ट भाषा है, अपनी पत्नी ने, मेरी पत्नी के बदले लोग कहते हैं ऐसा, अपने पुत्र का अथवा पुत्री का नाम लेकर, तो उसने वो कह दिए परमेश्वर की मुकुंद की मां भी आई है, एकदम चैतन्य महाप्रभु संकुचित हो गए एकदम। तो वहां पर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अमूर्ख व्यक्ति प्रेम में इटिक्यूट नहीं जानता, यह उसको नहीं कहना चाहिए था, उसको यह नहीं किया, शब्द भी नहीं कहना चाहिए था कि मेरी पत्नी भी आई है, पत्नी तो उन्होंने कहा, मुकुंद की मां, मुकुंद उनके लड़के का नाम था। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु बड़ा स्ट्रिक्ट थे इस विषय में, ठीक है। तो प्रश्न पूछने पर यह सावधान रहेगा कि मैं एकदम तात्पर्य पर ही अटका रहा हूं, एकदम बाहर एकदम नहीं गया हूं। मेरा दोष मत मेरी
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पत्नी जब पति का नाम लेके नहीं पुकारना चाहिए, अगर पति का नाम भगवान का नाम से हो और जैसे राम है कृष्ण हो, तो फिर उसको क्या कर, स्त्री को क्या करना चाहिए?
तो यह तो आपका प्रश्न ही है ना। वैदिक ग्रंथों में कोई पत्नी अपने पति के लिए कहती है तो आर्ज, आर्ज क्या पूरा कहते हैं, आर्ज पुत्र कहने के लिए, आर्ज आर्ज पुत्र, आर्ज पुत्र में पति प्रत्यक्ष रूप से नाम किसी कारण से इटिकेट है, सदाचार है, गुरु का भी नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट गुरु का नाम, इसीलिए उस कुछ है जैसे प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी, नाम डायरेक्ट वह कहना उत्साहित नहीं, तो वैसे ही यह सदाचार है कि प्रायः वैदिक काल में जो स्त्रियां हैं अपने पति का डायरेक्ट नाम नहीं लेती थी, आर्य पुत्र यह शब्द कहा जाता, अगर पति को कहना है तो आर्य पुत्र, आर्य पुत्र आए। अथवा दूसरा शिष्टाचार है कि पुत्र है अथवा पुत्री है तो उसके संबंध से, तो उन्होंने परमेश्वर ने कहा, कह सकते थे कि मेरी पत्नी आई है, आए? आए? कहना ही चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, हम तो क्या कहते हैं कि ऐसा लिखा गया है। बताना ही पड़ता है ना, तो कहना है नाम तो, लेकिन बहुत उत्साही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, जो माता जी थी वो तो बहुत महान थी, क्योंकि कश्यप मुनि की धर्मपत्नी थी, तो फिर उनके विचार इस तरह से जो कश्यप मुनि से डिमांड किया था, ऐसे विचार इतनी ऊंची स्टेज पर कैसे आए माता जी के अंदर?
मैं जो कोई भी जब जीव इस प्राकृतिक स्थिति में आता है तो आत्मा तो एकदम शुद्ध है, निर्विकार है, लेकिन जो प्राकृत वातावरण में आता है तो उसमें प्रकृति के गुणों के सभी दोष विकसित होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, क्योंकि हम इस वातावरण में आते हैं तो उसे विकसित होने लगता है, ये प्रभावित होता है, मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हम इस वातावरण में आए हैं जिस प्राकृत जगत में, तो प्राकृत जगत के दुर्गुण है उसको अडॉप्ट आत्मा करता है, जीव कर लेता है। तो यह साइकिक दोष है, कोई भी आज कोई उस स्थिति में जाएगा तो दुर्गुण उसमें होते हैं। तो इसीलिए आत्मा रूप से तो चाहे स्त्री का आत्मा है तो पुरुष का आत्मा है, उसमें भेद नहीं है, नित्य भगवान का अंश है, भगवान का ही अंश है, लेकिन प्राकृत वातावरण में आने से, भौतिक आने से, माया के दोषों से वह लिप्त होता है। न्यूनाधिक रूप से सब लोग उससे लिप्त होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। यहां पर्याप्त कहा है कि स्त्री के शरीर में जब आत्मा जाता है तो वहां और भी दुर्गुण पनपने की, उत्पन्न होने की संभावना रहती है, मैनिफेस्ट होने की संभावना। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य ग्रंथ में यह कहते हैं कि यह सारा जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, देहात्म धारणा पर आधारित होकर, जो भी हम देहात्म धारणा से ऊपर उठते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, किसी प्रकार का आकर्षण, भौतिक आकर्षण उसमें नहीं रहता है, उसका आकर्षण भगवान के प्रति हो जाता है, और भगवान के प्रति जब उसका आकर्षण होता है तो दुनिया के सारे आकर्षण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, छीन हो जाते हैं। और कुछ
महाराज जी, आपने कहा कि स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और जैसे हम देखते हैं कि एक मदर जो है, एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है निस्वार्थ भाव से जो है उसकी सेवा करती है, अब उस बच्चे के लिए जो है वो काफी कुछ सैक्रिफाइस भी करती है, तो ये कहाँ तक मतलब सही है ये बात क्या नहीं? उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता जब एक मदर अपने बच्चे को जो है वो उसकी सेवा करती है?
हाँ अवश्य, मतलब कि मातृ हृदय भगवान रासलीला के प्रसंग में जब प्रेम की बातें कहते हैं कि इस जगत में भी प्रेम देखा जाता है, होता है, एकदम रासलीला के मध्य में गोपियों से कह रहे हैं, तो उसके उदाहरण में माता पिता का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसको आदर्श रूप में भगवान एकदम रासलीला के, श्रीमद भागवतम के रासलीला के प्रसंग में के आदर्श के रूप में, और जगह तो प्रेम नहीं है लेकिन माता का, माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वह रियली होता है, सच्चा होता है, माँ अपने पुत्र के लिए अपने सुख का अपने सब कुछ का उत्सर्ग कर देती है, अपने धन का शरीर का सब कुछ बच्चे का पालन करती है। तो एक ग्लिम्स मिलता है प्रेम का, यानी यदि प्राकृतिक जगत में कोई है कुछ प्रेम कुछ है तो मां का अपने पुत्र के प्रति संतान के ओर सच्चा प्रेम होता है, इसमें किसी प्रकार कपट ने अपना उत्सर्ग सब कुछ बच्चे के लिए छावर कर देती है। परंतु उस प्रेम में भी कुछ स्वसुख वासना छिपा रहता है, अपना अपनापन रह कि हमारा उससे कुछ इंटरेस्ट बना रहा। भगवान कहते हैं कि केवल जो भगवान के प्रति प्रेम किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। तो माता पिता के मन में जो प्रेम होता है, आप देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका आचरण ठीक नहीं रहता है तो माता पिता का ही प्रेम भी निभा नहीं पाते हैं, माता पिता भी छोड़ देते हैं ना। बच्चा जब दुर्गुण में पड़ जाता है, अत्याचार करने लगता है, माता पिता को मारने पीटने लगता है, दुख देने लगता है, तो माता पिता का स्नेह भी शिथिल पड़ जाता है। कम से कम यदि वो सच्चा प्रेम होता है भी, हम नहीं कहते हैं, लेकिन यदि बच्चा किसी भी अवस्था में जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसकी अवस्था आती है अपने स्वतंत्र होने लगता है, माता पिता का स्नेह धीरे धीरे कम होने जाता है। अथवा दो पुत्र हैं तो किसी में कम हो जाता है किसी में ज्यादा हो जाता है, प्राय देखा जाता है कि स्त्रियां होती हैं तो अपने छोटे पुत्र से ज्यादा स्नेह करती हैं बड़ों का उतना, और पिता होते हैं तो अपने बड़े पुत्र का ज्यादा प्रेम करते हैं छोटे से कम। यदि प्रेम होता सचमुच होता घनीभूत होता इसमें कमी बेसी नहीं आती, वह प्रेम वास्तविक प्रेम केवल कृष्ण से किया जाए। आश्लीष सेवा पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतुआ यथा तथा वा विदधा तुलंपटो मत प्राण नाथस्तुमाम सयोना। माता पिता के पुत्र के प्रति प्रेम है निस्संदेह, भगवान उसे आदर्श रूप में कहते हैं, लेकिन वही भगवान कहते हैं कि कुछ न कहीं स्वार्थ छिपा रहता है, आगे चलकर हमारा पालन पोषण करेगा, यह करेगा यह करेगा, इसका इसके कारण मैं बड़ा बनूंगा, त्याग भी तो आदर्श है लेकिन फिर भी। और जहां तक विश्वास की तहां पर देखिए एकदम हू बहु प्रभुपाद जी को, चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसु राजकुलेषु च, अनुवाद डायरेक्ट कोट कर दिया। फिर अनुवाद प्रभुपाद जी कहते हैं, दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करे, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। सब कुछ बातें हैं इसलिए कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से महत्वपूर्ण जन्मभूमि मां है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं करना चाहिए। एक जगह पुरु महाराज ने कहा है, आप जानते हो कथा से परिचित होंगे कि जजाति महाराज यौवन मांग वृद्ध हो गए थे, कथा तो जानते होंगे ना, चार पुत्र थे इन्हें उसमें जन्म, तो उनके ससुर ने श्राप दे दिया, वृद्ध हो गए, और उन्होंने व्यवस्था दे दिया कि आपके यदि पुत्र चाहते हैं आप जवानी बदलना तो अपने जवानी उनसे ले सकते हैं। तो प्रथम पुत्र के पास गए जदु महाराज, कहे कि बेटा अपनी जवान मेरी वृद्धावस्था स्वीकार कर जवानी दे दो, जदु महाराज ने नहीं दिया। इस वक्त तीसरा पुत्र दूसरे के पास, वो अभी नहीं दिया, तीसरे उसने, चौथे के पास गए, कहा कि पिताजी मुझे आज बहुत इस बात का जीवन भर दुख रहेगा कि मैं प्रथम कोटि का पुत्र नहीं हो सका, उत्तमस चिंतितम कुरियात, उत्तम पुत्र वह है जो पिताजी के मन में क्या है समझ जाए, उनको मुख खोलने की जरूरत नहीं, अपने से पालन कर दे। और उत्तमश चिंतितम कुर्यात्, मध्यम पुत्र वह है जो पिताजी कहते हैं उनको मुंह खोलना पड़ता है तो आज्ञा का पालन कर देता है। तीसरे कोटि का पुत्र वह है जो कहने पर पिता की आज्ञा का पालन तो कर देता है लेकिन भार मानकर करता है, क्या करूं, नहीं कहना चाहिए पिताजी को लेकिन कह दिया तो पुत्र हूं तो करना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन कर। तो थर्ड कोटि का पुत्र है और वह कहते हैं कि और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है वह फोर्थ कोटि का है कि क्या, नहीं वह पुत्र ही नहीं है। उसके लिए अज्ञक शब्द श्रीमद् भागवत में उच्चरितम अथवा मूत्र कहा गया, वो पुत्र नहीं है। तो किसी भी पुत्र का यह अधिकार नहीं होता है कि मां कोई आज्ञा दे रही है, पिता कोई आज्ञा दे रहा है तो उस पर यह विचार कहे कि उचित आज्ञा है कि अनुचित आज्ञा है, यह अधिकार पुत्र को नहीं होता है। मां ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया, बस आंख बंद कर उसे करना होता है। इस पर हम नहीं विचार करना है कि उचित आज्ञा है कि अनुचित आज्ञा है, यह औचित्य और अनौचित्य का विचार करने का अधिकार किसी पुत्र को नहीं दिया गया। यदि वह विचार करता है तो वह पुत्र नहीं है, मूत्र है ना, ना दोनों की उत्पत्ति एक ही ढंग से होते हैं, वह मूत्र ही है, पुत्र है ही नहीं। मां का पिता का गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यवहारिक नीति है उसमें चाणक्य पंडित कहते हैं, प्रभुपाद इसमें कोट भी वही करते हैं। या देखिए चैतन्य महाप्रभु को भी हमने तो उसे थोड़ा सा छोड़ ही दिया था कि चैतन्य महाप्रभु स्त्री शब्द भी नहीं बोलते थे, प्रकृति कहते थे। स्त्री आ रही है तो वो नहीं कहेंगे स्त्री आ रही है, प्रकृति आ रही है, प्रकृति जा रही है, स्ट्रिक्ट होते हैं। इन्हीं हमें एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, ये तो एक श्लोक है और भी श्लोक लेके सम्मान में भी कितना कहा गया है। कुंती भी मां है, ब्रज की गोपियां स्त्रियां हैं, यशोदा भी मां है, स्त्री है, जो भक्ति के उच्चतर शिखर पर कोई पहुंचा है तो स्त्रियां ही पहुंची हैं, जो एकदम टॉप, अब उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ है, जो एकदम टॉपर हैं भक्ति में तो स्त्रियां ही हैं। जानते हैं ना बात, मां यशोदा के बराबर कोई भक्त नहीं है, उस लेवल का कोई भक्त नहीं है, तो स्त्री शरीर में है। ब्रज की गोपियां जो आदर्श हैं, फिर भी जो इसे प्रारंभिक में प्रारंभ बताया जाए कि भौतिक लेवल पर विचार हुआ है तो स्त्रियों का यह क्रिटिसिज्म नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वाभाविक, उनके स्वभाव का एक नेचुरल स्टडी है अध्ययन, तो नेचुरल स्टडी है रिसर्च, वो तो सब कहना ही पड़ेगा क्या क्या कहा क्या स्थिति है। ठीक है, थोड़ा देर भी हम सुना। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।